नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम हमसे है देश की आठवीं कड़ी में। मैं हूँ कामायनी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट कबीर।
और हमारे पिछले अंक की बातचीत में हमने जाना था कि भारत का हर नागरिक पूरे भारत में कहीं भी जाए, किसी भी प्रदेश में जाए, उसके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
बिल्कुल।
इससे मुझे बुलबुल बाग का एक किस्सा याद आ गया।
बेताल छपी सी, बेताल छपी सी, बेताल छपी सी रे।
बेताल, बेताल, अरे बेताल भाई, जल्दी बताओ कहाँ हो बेताल।
अरे आज कौन सा पहाड़ टूट गया, इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो है?
अरे यूं समझो पहाड़ ही टूटा है। मुझे खबर मिली है कि कुछ लोग मुझे अब भी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं मानते। वो मुझे बुलबुल बाग के शेर खान की तरह बाहर कर देना चाहते हैं।
अगर तुम लोकतंत्र का हिस्सा बन चुके हो तो तुम्हारी नागरिकता कैसे कोई तुमसे छीन सकता है भला। अच्छा चलो, तुम्हें बुलबुल बाग ले चलता हूँ। मौसम बदल रहा था, घुमक्कड़ घिरनी और उसके साथियों को अब बुलबुल बाग की हवा सूट नहीं कर रही थी। अब वक्त था कि वो बुलबुल बाग में मेहनत से बनाया अपना घरौंदा छोड़ अगले 6 महीने किसी दूसरे आशियाने की तलाश में निकलें।
मेधावी मेंढक, अब मेरे जाने का वक्त होने वाला है, पर मैं इस बात से परेशान हूँ कि बुलबुल बाग के संचालन में मुझे जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, उन्हें किसे सौंप के जाऊँ।
आप चिंता क्यों करती हैं घुमक्कड़ घिरनी जी, हा? आपका जाना तो तय था, और ये भी कि आप अपनी जिम्मेदारी अपने लौटने तक किसी को देकर जाएंगी, तो मुझे ही दे दीजिए। मैं आपके नेतृत्व को अच्छे से समझता हूँ और आपसे जो इतना कुछ सीखा है उसका कुछ तो इस्तेमाल हो।
अरे हाँ मेधावी, मैं तुम्हारे रहते कैसे फिक्र करने लगी, तो मेरे पीछे तुम ही स्नेह और आसपास के इलाके को संभालो।
घिरनी जी आप निश्चिंत रहिए।
मेधावी मेंढक को तो जैसे घुमक्कड़ घिरनी के सामने खुद को साबित करने का मौका मिल गया हो।
मेधावी जी, ये इश्क भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। वैसे आपको याद दिला दूं कि घिरनी सिर्फ लोकतंत्र में अपनी कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंप कर गई है, उन्होंने अपना दिल अभी आपको दिया नहीं है।
मछली तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम मेरे और घिरनी जी के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो आ? तुम मेरी दोस्ती हो ना या कोई बैरूपिया दुश्मन आ?
अरे अरे बिगड़ो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। वैसे तुम उस घुमक्कड़ को लेकर इतने क्यों गंभीर हुए जा रहे हो, तुम्हें पता है जितनी घिरनियाँ बुलबुल बाग से जाती हैं, हमेशा उतनी लौट कर नहीं आती, कभी ज्यादा तो कभी कम, तो हो सकता है कि तुम्हारी घुमक्कड़ घिरनी लौटे ही नहीं, बस एक अच्छे दोस्त की हैसियत से तुम्हें आगाह कर रही हूँ।
छी छी, अपने ही नेता के लिए तुम ऐसी बातें करती हो मछली। अरे मेरी घिरनी, मेरा मतलब है घुमक्कड़ घिरनी जी, बुलबुल बाग में सिर्फ दाना चुगने नहीं आती, वो बुलबुल बाग का हिस्सा है, वैसे ही जैसे तुम हो, जैसे ये नहर तुम्हारे और मेरे बिना अधूरी है, वैसे ही घिरनी जी के बिना भी, समझी है?
अरे हम सब समझे हैं, पर हमारी और तुम्हारी बात और है, यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे भी, पर वो घिरनी तो घुमक्कड़ है। अरे जिसके नाम में ही घुमक्कड़ हो वो कैसे कहीं टिक सकता है भला, आज बुलबुल बाग कल कहीं और बसेरा कर लेगी वो।
देखो मछली, हम नहीं जानते कि तुम कागजे कायदे में लिखे गए नियमों को जानती हो या नहीं, पर हम जानते हैं घुमक्कड़ घिरनी भले ही जंगल जंगल चली जाए, भले ही कितनी बार भी जाए, पर कागजे कायदा कहता है कि घिरनी और उसके जैसे कई पशु पक्षी बुलबुल बाग के किसी भी और पशु पक्षी से कम या ज्यादा नहीं है, बराबर है और हमेशा रहेंगे। टर,
टर। हाँ हाँ जाओ जाओ, पर याद रखना, दोस्तों की नहीं सुनोगे तो बहुत पछताओगे मेधावी बाबू। हाँ
तो क्या समझे विक्रम?
यही कि घिरनी भले ही घुमक्कड़ हो पर उसके हक बुलबुल बाग से कोई नहीं छीन सकता।
और अब एक और सवाल। सही जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और तुमने अगर जानबूझकर गलत जवाब दिया तो तुम भस्म हो जाओगे।
तुम्हारी शर्तों से मुझे अब डर नहीं लगता बेताल। पूछो।
ये बताओ कि एक नागरिक के तौर पर तुम्हारे क्या अधिकार हैं?
एक नागरिक के नाते मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ, चुनाव के लिए खड़ा हो सकता हूँ और वोट दे सकता हूँ, और मेरे ये हक मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, और मुझे कोई यूं ही अपने देश से नहीं निकाल सकता।
सही जवाब, और ये मैं उड़ा।
बेताल, अरे बेताल सुनो तो।
तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमसे है देश,
और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट देश विदेश का, और आज हम महिलाओं की नागरिकता के अधिकार पर बात करेंगे और जानेंगे कि विश्व में महिलाओं की ये लड़ाई कहां कहां लड़ी गई।
देश विदेश से, देश विदेश से।
1920 में हजारों अमरीकी महिलाओं ने पहली बार वोट डाला था। समाज सुधारकों को करीब 100 साल लगे यहां तक पहुंचने में, और आखिरकार 26 अगस्त 1920 को अमरीकी संविधान में औरतों को वोट डालने का हक दिया गया। लूसी बर्न्स और सूजन बी एंथनी जैसी महिलाएं मताधिकार की लड़ाई लड़ने सामने आईं, जिन्हें अपनी इस मांग के चलते जेल भी जाना पड़ा। सूजन बी एंथनी ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं।
हाँ जज साहब, हाँ मुझे बहुत कुछ कहना है। मुझे अपराधी ठहराकर आपने हमारी सरकार के मूल सिद्धांतों को अपने ही पैरों तले कुचल दिया है। मेरे प्राकृतिक अधिकार, मेरे नागरिक अधिकार, मेरे राजनैतिक अधिकार और मेरे न्यायिक अधिकार, इन सभी को नजरअंदाज किया गया है। मेरी नागरिकता का मूल अधिकार छीनकर आपने मुझे एक नागरिक होने के बजाय सिर्फ एक पराधीन व्यक्ति बना दिया है, और केवल मैं ही नहीं बल्कि आपके इस फैसले ने सभी महिलाओं को आपकी इस सरकार के अंदर राजनैतिक पराधीनता के गर्त में डाल दिया है।
आज कई देशों में औरतों को बराबर चुनाव लड़ने और वोट डालने का हक है, पर आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां औरतों की नागरिकता में भेदभाव दिखता है। ये भेदभाव ज्यादातर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के कई देशों में भी देखा जाता है, जहां इससे संबंधित कानून भी बने हुए हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो सरोजिनी नायडू का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र में हिस्सेदारी के साथ साथ नागरिकता पर भी जोर दिया। 1919 में दिए गए अपने एक भाषण में सरोजिनी नायडू कहती हैं,
मैं आज आपके सामने कोई रियायत मांगने या कोई एहसान मांगने नहीं आई हूँ, वो मांगने आई हूँ जो हमारा अधिकार है। भारतीय महिलाओं को ताकत या सत्ता की अभिलाषा नहीं होती। एक महिला खुद एक ताकत है, पर अगर सरकार भारत की किस्मत बदलकर एक उज्जवल भविष्य लाना चाहती है, वाकई जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, तो ये जरूरी है कि महिलाओं को उनका पूरा हक दिया जाए, महिलाओं की आवाज को बुलंद किया जाए।
सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं के योगदान को देखकर मुझे बहुत गर्व होता है, और नागरिकता की इस चर्चा को आगे ले जाते हुए हमने एक था नागरिक सेगमेंट में आप सबसे बातचीत की और जाना कि वो कौन कौन सी घटनाएं थीं जब आपको एक भारतीय नागरिक होने पर गर्व हुआ। तो आइए सुनते हैं आपकी ही जुबानी।
नागरिक। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को बहुत सीमित अधिकार मिलते हैं, लेकिन मैं भारत में रहती हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, बाहर निकल सकती हूँ, जो चाहे पहन सकती हूँ, मुझे किसी पर्दे में रहने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। तो मुझे बहुत गर्व होता है भारत की महिला होने पर।
एक मुस्लिम होने के नाते जब मैं ये देखता हूँ कि विश्व के कई देशों में आजकल बुरे हालात हैं, बहुत मारकाट मची हुई है और तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में मुझे अपने भारतीय होने पर, भारतीय मुस्लिम होने पर बड़ा गर्व होता है, फख्र होता है।
इंसान होना बहुत जरूरी है और मैं कहता हूँ ये इंसानियत बहुत सारे देशों में नहीं है लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी कायम है, इसलिए मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है।
हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं लेकिन सारे धर्म के लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं, एक दूसरे के गम में, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं और मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत ही गर्व हुआ।
के लोग पैसे कमाने के लिए वेस्ट की तरफ जाते हैं, वो लोग आध्यात्म के लिए इंडिया की तरफ आते हैं और इसके लिए इतनी अच्छी बातें बताते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा है, इसका कल्चर ऐसा है, तो बहुत कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिसे हमें गर्व करना चाहिए कि हम इंडियन हैं।
गायत्री मंत्र बोलता हूँ तो मुझे भारतीय होने पर गर्व होता है।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे भी अपने भारतीय नागरिक होने पर बहुत गर्व होता है जब मैं आजकल आसपास देखता हूँ कि ज्यादातर लोग कचरे को सड़क पर या इधर उधर ना डालकर कचरा पेटी में डालते हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है।
और अब हमारे दिल से सेगमेंट में सुनते हैं मशहूर शायर कैफी आजमी की नज्म मकान।
दिल 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 से, दिल से।
आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी।
ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटी शाखों से उतारे हमने, इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने।
हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और सवारा हमने।
आंधियां तोड़ लिया करती थी शामों की लौ, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने, बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिशे तामीर लिए।
अब बारी है आपके इम्तिहान की और सरप्राइज गिफ्ट की। सवाल है, भारत में नागरिकता के लिए मुख्य प्रावधान क्या है?
जी तो मोबाइल उठाइए और कॉल कीजिए 07966210428 पर, दिए गए ऑप्शंस के लिए बटन दबाइए और पाइए हमारा सरप्राइज गिफ्ट, कॉल निशुल्क है।
आपको हमसे है देश कार्यक्रम कैसा लगा हमें आप पत्र, ईमेल और फोन के जरिए जरूर बताएं। हमारा पता है आइडियो सिंक मीडिया कंबाइंड 1381 सेक्टर 37 फरीदाबाद 121003 हरियाणा, और ईमेल एड्रेस है freedom@idiosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972।
कार्यक्रम हमसे है देश आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के वित्तीय सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलबुल बाग की कहानी रंजीत लाल की किताब द क्रो क्रॉनिकल्स पर आधारित है। तो अब आपसे लेते हैं अनुमति, अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे।
जय हिंद।